કાર્તિકેયનું પ્રેક્ષણ લેક્ચર નંબર 140 ઓ નમઃ સિદ્ધે
તિલકં દેવં
વંદિત્વા ત્રિભુવનેન્દ્ર પરિપૂજ્યં
વક્ષે અનુપ્રેક્ષાઃ ભવિકજનાનંદ જનની.
યે આચાર્ય કાર્તિકેય જો કાર્તિકેય સ્વામી નામ સે પ્રસિદ્ધ હૈ ઉન્હોને જો કાર્તિકેય અનુપ્રેક્ષા લિખી હૈ वो जो शास्त्र है उस शास्त्र को हम देखते देखते जो आखिर की बारहवीं भावना है कौन सी धर्म भावना उस देखते वक्त हम सर्वज्ञ का स्वरूप भी देख चुके हैं और यहाँ पर जो श्रावक जीव है और जो मुनि है उनके बारे में भी यहाँ बातें बताएगी. उसके पहले में શ્રાવક જો હોતે હૈ ઉનકી ભી બાત બતાએ કે વો 12 વ્રતો કે ધારક હૈ 12 ગુણો મતલબ 12 પ્રતિમાએ ઉનકી હોતી હૈ વગેરે વગેરે. તો વહાં પર બાત
લિખી થી શુદ્ધ સમ્ય દ્રષ્ટિ ઓર 11 પ્રતિમા
દર્શન પ્લસ 11 પ્રતિમા. અભી યહાં પર યે જો 12 ધર્મ કી બાત કી બતાએ હૈ ઉસકે પહેલે જો સમ્યક દર્શન હૈ વો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરને કી યોગ્યતા કિસ જીવ કે હોતી હૈ और वो योग्यता कौन कौन सी है ये बात जब चली थी तब वहाँ उन्होंने पहले ही बताया था कि वह जीव भव्य होना चाहिए, चतुर गति का होना चाहिए. क्यों पंचम गति कौन सी है भाई? पंचम गति कौन सी है? यहाँ लिखे चतुर गति का जीव होना चाहिए. हाँ बोलो भाव है तो उसको सम्यक दर्शन होगा. वो पात्र है कि नहीं? नहीं वो पात्र है कि नहीं? पात्र पूर्ण हो गया? नहीं, उनकी पात्रता व्यक्त हो चुकी है क्योंकि सम्यक दृष्टि तो वो डेफिनेटली है ना. तो पात्र थे जब ही तो सिद्ध बने हैं. ये ऐसा आपका उत्तर है बरोबर. अब कहते हैं वो संगी होना चाहिए. संगी होगा वही सम्यक दृष्टि होगा. इसका अर्थ क्या हुआ कि एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को सम्यक दर्शन होगा ही नहीं. फिर कहते हैं विशुद्ध परिणाम वाला होना चाहिए, यानी जिसके तीव्र संकलेश परिणाम न हो ऐसा जीव होना चाहिए. उसके बाद कह रहे हैं वह जागृत होना चाहिए. जागृत यानी क्या? सोते हुए जीव को उस समय आत्मानुभूति का यह सम्यक दर्शन नहीं होगा. और कहते हैं पर्याप्त जीवों को ही होगा, अपर्याप्त जीवों को होता ही नहीं. ये भी बात आ गई. तो अभी तक हमने क्या देखा? एकेंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक. और क्या है? सोते हुए जीव को. और क्या है? अपर्याप्त जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होगा. उसी प्रकार से अभव्य की भी बात हमने देखी थी. अब आगे बता रहे हैं जिनके संसार का किनारा नजदीक आ गया है, यानी अभी बस उनके मोक्ष आने का समय हो गया है और अभी केवल कितना अधिक से अधिक टाइम बाकी रहा होगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन. हाँ साहब. अब आगे कहते हैं वह ज्ञानी यानी ज्ञानोपयोग साकार ज्ञानोपयोगी होना चाहिए, यानी उसके ज्ञान उपयोग चल रहा है, दर्शनोपयोग नहीं। जब पहले में पहले जब किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है उस समय वह ज्ञानोपयोगी होना चाहिए, यानी उसके लिए वहाँ क्या कहा, साकार ज्ञानोपयोगी। इतनी बात कल हमने देखी थी, फिर से आज हम अर्थ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप बताएंगे?
देखो यहाँ 307 गाथा का अर्थ देखते हैं। आओ जीव सम्यक्त्व ने पामे छे के, अभी यहाँ योग्यताएं बता रहे हैं के जे प्रथम तो भव्य जीव होए, कारण के अभव्य ने सम्यक्त्व थाय नहीं। ये अभव्य कौन से कर्म के उदय में होते हैं? अमोल आपको पता है कौन से कर्म के उदय में जीव अभव्य होता है? आपको पता है कर्म 8 है मालूम है ना, उनमें से कौन से कर्म के उदय के कारण जीव अभव्य है?
हाँ बोलो। बापा बताएंगे
नाम कर्म के कारण।
डॉक्टर आप अच्छा। क्या कहते हैं? हाँ आप क्या कह रहे हैं? अरे कर्म कौन सा कर्म का उदय के कारण, ये प्रश्न है। हाँ कोई भी कर्म के उदय के कारण,
यानी किसी कर्म के निमित्त से जीव भव्य या अभव्य नहीं होता, ख्याल में आया ना?
बताएं।
नहीं तो कर्म का उदय बदल जाएगा तो अभव्य में से भव्य हो सकता था, परंतु ऐसा तो कभी होगा नहीं। उसको जीव का पारिणामिक भाव कहा है। क्यों पारिणामिक? जो किसी कर्म के निमित्त से होता है वो पारिणामिक है।
यानी पारिणामिक भाव किसे कहना, ये पहले हमारे ज्ञान में आएगा, तो आपने जो उत्तर दिया वो आपके समझ में आएगा। पारिणामिक भाव वह भाव है कि जो स्वभाव भाव है, तो स्वभाव कौन से कर्म के उदय से होगा?
यानी वहाँ कोई भी क्षय के उपशम
स्वयं सिद्ध है। स्वभाव के लिए कोई कर्म की आवश्यकता ही नहीं कि उसके निमित्त से यहाँ हो जाए। इसलिए आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही उत्तर है दोनों का, कि दोनों पारिणामिक भाव है।
यानी वहाँ कोई कर्म का न क्षय है न उपशम है न क्षोपशम है न उदय है, कर्म की ये चारों ही अवस्थाएं वहाँ नहीं है, तो किसी कर्म के कारण वो नहीं है, तो यहाँ पारिणामिक भाव कहा, ख्याल है ना? यानी
और अन्य पारिणामिक भाव कौन से है सुशीला बेन?
तीसरा कौन सा है?
हाँ जीवत्व, दो जनों ने बता दिया, बहुत अच्छा।
ये पर्याय रूप भाव लिए ना, हाँ। वो परम
पार भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक भाव है किसी जीव के। एक से अपने एक साथ अधिक से अधिक कितने पारिणामिक भाव हो सकेंगे? हाँ दो, और कम से कम, हाँ और कम से कम कितने होंगे? हाँ बरोबर, आपका कहना है अधिक से अधिक दो होंगे और कम से कम भी दो ही होंगे, और कोई एक उंगली से बता रहा एक ही है करके, अभी क्या करें, उनको ही पूछना पड़े मुझे। हाँ बोलो साहब। जीव तो किसको होता है? सिद्धों को।
सिद्धों में वो भव्य ने होने योग्य, जो सिद्ध तो हो चुके हैं, अभी उसको होने योग्य नहीं कहेंगे।
जैसा आपने बहुत बार उदाहरण दिया है कि अभी हम किसी लड़के को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराते हैं, मतलब उसको कॉलेज में हो पेशेंट बोल के नहीं, तो कहेंगे कि ये डॉक्टर होने योग्य है क्योंकि उसको एडमिशन मिल गया, तो कुछ ना कुछ दिन में वो डॉक्टर जरूर बनेगा। और डॉक्टर बनने के बाद वो अभी डॉक्टर बनने की कैपेसिटी रह गई क्या, हो गए पूरा? तो ऐसे भव्यत्व जो था वो तो चौथे गुण स्थान से शुरुआत हुई, भव्यपना रजिस्टर हो गया, और सिद्धम हो गया जब भी भव्य भी नहीं अभव्य भी नहीं, जीवत्व एक ही पारिणामिक भाव रहेगा। ये हम जरा अलग अलग अपेक्षा से सोचेंगे।
वैसे कोई दूसरे गुणस्थान में भी है तो वो भव्य होगा कि अभव्य होगा? सुशीला बेन, भव्य ही होगा क्योंकि अभी एक बार सम्यक तो प्राप्त करके आया है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं।
ये प्रश्न में हमारे बापा जरा क्या हो गया ऐसा लग रहा था, कोई बात नहीं। अच्छा दूसरे गुणस्थान में कोई पारिणामिक भाव होता है क्या वहाँ? हाँ बोलो बोलो। अच्छा और उदय भी नहीं है। चलो आगे।
तो उसको श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करना, दर्शन होने की अपेक्षा करना।
वो कर्म की अपेक्षा,
उस कर्मों का कोई वहाँ कैसा घटित किया। श्रद्धा का तो साधन ही है वो। ठीक है। देखो आओ जीव सम्यक तो ने पामे छे के जे प्रथम तो पहले में पहली कंडीशन वो भव्य होना चाहिए, जे भव्य जीव हो, कारण के अभव्य ने सम्यक तो थाय नहीं। वड़ी चारे गति मां सम्यक तो उपजे छे, चारे गति क्योंकि संसार में चार ही गति है। ये जो पंचम गति कहते हैं वो तो उपचार से ये चार नहीं है इसलिए उसको पंचम कहते हैं, परंतु गतियां जो है भ्रमण करने के ये चार ही है। ये संसारी जीवों के भेद बता रहे हैं ना यहाँ पर। तो चारे ही गतियों मां, भले वो नारकी हो, तिर्यंच हो, मनुष्य हो या देव हो, त्या पण मन सहित संगी ने उपजे छे पण असंगी ने उपजतु नथी। ये मन की कंडीशन क्यों रखी है, मन का ऐसा क्या वहां कार्य होता है सम्यक तो प्राप्ति में? मन क्या करता है? जानना तो अन्य इंद्रियों के द्वारा भी जानना चल रहा है। गलत सही का निर्णय कर सके, क्या सही है क्या यानी कौन से, यानी मैं कौन हूँ, पर कौन है। मूल में मूल पंचेंद्रिय क्यों? क्योंकि उपदेश को ग्रहण करना है पहले में पहले, और जो सुना हुआ उपदेश वो याद रखने का भी कार्य मन का होगा। उस पर बारंबार विचार करना और सही निर्णय तक पहुंचना ये भी कार्य मन के द्वारा होगा। मन के द्वारा नहीं, मन तो जड़ है परंतु करने वाला तो जीव है, परंतु उसके बुद्धि का ज्ञान का इतना विकास है कि वो उसमें से अपने हित का और अहित का विचार कर सकता है। इसको कहते हैं मन के द्वारा उसका विचार करना। तो असंगी ने उपजतु नथी तेमा पण विशुद्ध परिणामी, विशुद्ध ने शुभ परिणामी लेना है। शुभ परिणामी अने शुभ लेशा सहित होए, ये शुभ लेशा वाली कंडीशन मनुष्य और तिर्यंचों के लिए है। देव तो शुभ लेशा वाले ही होते, पीत पद्म और शुक्ल वाले। देवों में अपर्याप्त अवस्था में भवनत्रिक में तीन अशुभ लेशा होती है, परंतु वहां सम्यक तो होने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में सम्यक तो होता नहीं, वो बात आगे आएगी। ये लेशा के नाम मालूम है? बोलो सुशीला बेन। हाँ, ये पीत कपोत पद्म ये कौन से है, शुभ है कि अशुभ है? शुभ। आप क्या कहते हैं? पीत कपोत और पद्म कहा उन्होंने। हाँ, और अशुभ कौन से है फिर? कपोत दोनों जगह ले रहे हो। हाँ, पीत पद्म और शुक्ल ये बढ़ती हुए शुभ लेशा है। कौन से? पीत से पद्म ज्यादा शुभ है, उससे भी शुक्ल, और जो अशुभ लेशाएं है वो कपोत यानी मिनिमम, फिर उससे ज्यादा है वो नील, और सबसे ज्यादा अशुभ है इसे वो कृष्ण लेशा। ये छह लेशा में पीत पद्म और शुक्ल ये तीन शुभ लेशाएं है। मनुष्य तिर्यंच और देवों की तो अपनी अपनी लेशा फिक्स रहती है पूरे लाइफ टाइम तक, और मनुष्य और तिर्यंचों में एक एक अंतर्मुहूर्त में पलटती है। नारकियों की भी लेशा अशुभ होती है परंतु वो भी फिक्स रहती है पूरे लाइफ टाइम तक। तो चेंज होने का सवाल मनुष्य और तिर्यंचों में होता है, तो उनके अशुभ लेशा में सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक्त प्राप्त होने के बाद चौथे गुणस्थान वाले को छह लेशा हो सकती है कोई भी, परंतु मिथ्यात्व में से सम्यक्त प्राप्ति का जो कार्य है वहां पर ये अशुभ लेशा में वो कार्य नहीं होगा। तो उसके विशुद्ध यानी विशुद्ध का अर्थ यहाँ शुभ भाव, मंद कषाय जिसको कहते हैं। तो विशुद्ध शुभ परिणाम यानी शुभ लेशा सहित होए। अब क्या ऐसा सर्वथा शुभ लेशा ही चाहिए? तो आगे कहते हैं अशुभ लेशा मा पण शुभ लेशा समान कषाय स्थानको मा होए तेने पण उपचार थी विशुद्ध कहेवामां आवे छे। अशुद्ध लेशाने कपोत, नील और कृष्ण जो लेशाए है उसमें भी कषाय स्थानक किसको कहना? तो कषाय के जो अलग अलग वेरिएशंस है, तो कोई मंद कषाय उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा, इसको कषाय स्थानक कहेंगे। तो अशुभ लेशाओं में भी जैसे शुभ परिणाम में होते हैं ना, शुभ लेशाएं होती है, वैसे एक कपोत पी कपोत नील और कृष्ण लेशा में भी मंद कषाय वाले कुछ स्थान है, उनमें मंद है तो कृष्ण ही, पर कृष्ण में कंपेरेटिव मंद है, तो उसको भी वहां विशुद्धि कहेंगे। क्योंकि जब वो हम विशुद्धि लब्धि कहते हैं तो नारकियों में भी वो विशुद्ध परिणाम हो गए, यानी क्या है, पहले के तीव्रता की अपेक्षा अभी वो मंदता की ओर गया है। तो कहते हैं तेने पन उपचार थी विशुद्ध कहेवामां आवे छे, परंतु संकलेश परिणामों में सम्यक तो उपजतु नथी। संकलेश परिणाम यानी तीव्र अशुभ परिणामों में सम्यक तो की प्राप्ति नहीं होती, उत्पत्ति नहीं होती। अब आगे की कंडीशन कहते हैं, जागृत अवस्था में थाय पर निद्रा अवस्था में थाय नहीं, क्योंकि जो ये निर्णय का कार्य है और शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम है, ये तो बिल्कुल जागृत अवस्था में, वो भी ज्ञानोपयोग में होगा, ये बात अभी आएगी आगे। पूर्ण पर्याप्ति वाला ने थाय पर अपर्याप्त अवस्था में थाय नहीं। देखो ये पर्याप्ति अपर्याप्ति क्या होती है मालूम है आपको? देखो जीव मरकर कहीं जन्म लेता है तो वहां उसके योग्य वहां पर्याप्ति होती है। अभी यहां संगी पंचेंद्रिय जीव है तो उसके छह पर्याप्ति होती है। जैविन नाम मालूम है छह पर्याप्तियों के? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो ये पर्याप्तियां यानी शक्तियां होती है, वो शक्ति की पूर्णता होना उसको कहना वो पर्याप्त हो गया। अब ये जो पर्याप्त नाम कर्म वाले जीव है उनको पर्याप्ति पूरी होने में एक अंतर्मूर्त लगेगा। जैसे हमारा घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब तक पूरा नहीं होता तो अंडर कंस्ट्रक्शन कहेंगे ना, उसको पूरा तो नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे अभी अधूरा है, ये अपर्याप्त ने अधूरा, पर्याप्ति जिसकी पूरी नहीं हुई है। तो जो नियम से पूरी होने वाली है परंतु अभी चल रहा है प्रोसेस, उनको कहेंगे निर्वृत्ति। निर्वृत्ति ने रचना होना, निर्वृत्ति अपर्याप्त। और कोई जीव ऐसे होते कि लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त को हमने बहुत बार सुना है, एक श्वास के 18वें भाग में उनकी आयु होती है, यानी उनको कहते एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे, यानी मैक्सिमम उनमें एक श्वास में यानी कौन सा, वो रेस्पिरेशन नहीं, जो हार्ट बीट होते हैं, हाँ, तो दो बीट के बीच में जो अंतर है उसको एक श्वास कहते हैं। तो उसमें 18 बार यानी उसका 18वां भाग, इतनी उनकी लाइफ स्पैन है, उनको कहते हैं लब्धि अपर्याप्त जीव। उनको तो सम्यक तो की कोई योग्यता ही नहीं होती, पर्याप्त उनकी ही होती है, परंतु कब, पर्याप्ति पूरी होने पर। ये बात यहां बताना चाहते हैं कि पूर्ण पर्याप्ति वाला ने थाय, पूर्ण पर्याप्ति वाले ने पर्याप्त नाम कर्म वाले जिनको पर्याप्त जीव कहते हैं उन्हीं को होगा, पूर्ण अपर्याप्त अवस्था में थाय नहीं, परंतु उन्हीं के अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, या लब्धि अपर्याप्त अवस्थाओं को भी, उनको भी, उन जीवों को भी नहीं होगा, दोनों को ही लेना है आप। अब संसार किनारो जेने नजीक वर्ततो होए, अर्थात निकट भव्य होए, यानी उसी को सम्यक दर्शन होता है। इसकी भी बात हमने कल बहुत की थी, उसका यहां भी लिखा है आगे, कारण अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पहला सम्यक्त्व उपजतु नथी। जिसको मोक्ष प्राप्त करने में, जिस जीव के, क्योंकि पर्याय का क्रम सुनिश्चित है, हर एक जीव का अपना अपना, तो जिस किसी को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक काल अभी मोक्ष होने में बाकी है, तो वहां उसको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, ये निश्चित है। आप कहेंगे जिसको सम्यक दर्शन होगा उसका क्या होगा, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन बाकी है तो उसका सम्यक तो छूट जाएगा। हमने देखा है असंख्यात बार प्राप्त भी करता है, छूट भी सकता है, क्योंकि वो पुद्गल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल या अनंत काल है, बहुत बड़ा काल है। तो ये कहते हैं कि उसके पहले सम्यक तो नहीं होगा। तो कहेंगे क्या पुरुषार्थ करेगा तो नहीं होगा, उसको उस जाति का पुरुषार्थ ही नहीं होगा। सब समवाय जब कार्य होता है तब सब समवाय आ मिलते हैं, जुटाना नहीं पड़ते, क्योंकि सब कुछ निश्चित है ना। उसका पुरुषार्थ भी निश्चित है, उसका निमित्त भी निश्चित है, और जो निमित्त तो उसके लिए होगा वही होगा, कोई अन्य भी नहीं होगा। तो कहते अर्ध पुद्गल काल, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पहला सम्यक तो उपस्तु नथी, तथा ज्ञानी होए। ज्ञानी का अर्थ यहां पर क्या लेना है, साकार उपयोग वाला, यानी ज्ञानोपयोग वाला। साकार उपयोग होए कारण के निराकार दर्शनोपयोग मां, ये दर्शनोपयोग को निराकार कहते हैं, क्योंकि दर्शनोपयोग में वस्तुओं के अस्तित्व का ग्रहण है, उनमें डिफ्रेंशिएट किए बिना सामान्य से सभी पदार्थों को वो ग्रहण करता है। और ज्ञान भिन्न भिन्न जैसा जो है उसको ग्रहण करता है, जानता है। आवा जीव ने सम्यक्त्वनी उत्पत्ति थाय छे, ये तो पात्रता योग्यता बताई है कि कौन सा जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करने में समर्थ है, क्योंकि यहां धर्म की बात चली ना। सम्यक दर्शन 12 धर्मों में सम्यक शुद्ध सम्यक दर्शन कहा। शुद्ध सम्यक दर्शन का अर्थ क्या किया था कल, याद है? शुद्ध सम्यक दर्शन किसको कहना, क्योंकि इसमें 12 व्रतों में पहला व्रत तो शुद्ध सम्यक दर्शन कहा है, उसका अर्थ क्या किया था, निश्चय सम्यक दर्शन। यानी वो कैसा होता है, तो फिर वो 25 दोष उसमें नहीं होते, वो बात हुई थी वहां पर। हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, किसी को मनुष्य में, मनुष्य भव में उसको सम्यक तो प्राप्त किया, तो आगे के भव में उसको सम्यक तो रहेगा कि नहीं रहेगा, यही प्रश्न है ना। तो हाँ देखो, यानी प्रश्न ऐसा है कि वापस कब होगा, हो सकता है ना। तो ऐसा है, एक जीव को सबसे पहले अनादि का जो है उसको सबसे पहले होता तो औपशमिक सम्यक तो होता है, तो उसके बाद अंतर्मूर्त में क्षोभशम सम्यक तो हो जाता है, उसके लिए कोई और कंडीशंस नहीं है। परंतु कोई जीव ऐसा भी है ना, वेदक सम्यक तो होने के पहले वो गिर भी सकता है, या फिर सम्यक्त्व के सहित क्षोभशम सम्यक्त्व के सहित कुछ काल तक रहकर गिर भी सकता है, या नहीं भी गिरे, उसका सम्यक्त्व चालू रहे, तो वो सम्यक्त्व के साथ देव में भी जाएगा। वो और कहाँ कहाँ जाता है उसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी एक बार। अन्य गति में जाने वाला भी क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक्त्व के साथ वहां चला जाएगा, क्षायिक होगा तो उसका सम्यक्त्व छूटने का सवाल नहीं है। हाँ, औपशमिक पूरा होने के पश्चात मिथ्या तो में जा सकता है, औपशमिक का काल थोड़ा बाकी है, तब अनंतानुबंधी के उदय में दूसरा सासादन गुणस्थान भी आ सकता है, अन्यथा वेदक सम्यक तो हो गया उसका, या चौथा या पांचवा या छठा सातवां गुणस्थान है, तो कौन से गुणस्थान में कहां गिर सकता है उसकी तो चर्चा हमने गुणस्थान में की थी, तो वहां भी उसका सम्यक तो छूट सकता है। अब आपका जो प्रश्न था, मनुष्य में सम्यक तो छूट गया है, अब मिथ्यात्व में जाने के बाद वो चारों गति में कहीं भी जाएगा, तो वहां जाने के बाद दोबारा सम्यक तो प्राप्त भी कर सकता है। अब उसके लिए एक कंडीशन ऐसी है, असंख्यात वर्षों तक तो एक बार सम्यक तो हुआ है औपशमिक, तो उसको वेदक सम्यक तो ही होगा, क्षोभशम सम्यक तो ही होगा जब जब होगा। असंख्यात वर्षों के पश्चात यानी तब तक तो उसको वेदक योग्य काल कहते हैं, उसके बाद उसको उपशम योग्य काल होता है। तो वहां वो जो तीन प्रकृतियां हैं उसकी कौन कौन सी, पहली बार औपशमिक सम्यक्त हुआ तो मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दो प्रकृतियां और तैयार हुई थी, ये तीन की संस्था असंख्यात वर्षों तक रहती है। तो वही जो जब कभी सम्यक्त्व प्राप्त भी कर सकता है, फिर छूट सकता है, फिर प्राप्त कर सकता है, फिर छूट सकता है, एक एक अंतर्मूर्त में फिर दोबारा प्राप्त कर सकता है। एक सौषम सम्यक्त्व है, एक एक अंतर्मूर्त में छूटता भी छूट भी सकता है, प्राप्त भी कर सकता है, और फिर भले ही छूट गया तो दूसरे गति में जाके वहां भी प्राप्त कर सकता है। हाँ, तभी से अर्ध पुद्गल परावर्तन ही बाकी है उसका अभी उसमें।
मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई जीव को अभी मनुष्य पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है तो वो कंटिन्यू भी रहेगी या सम्यक्त्व से वो छूट भी जाएगा, अगले भव में साथ में भी लेके जाएगा या अगले भव में जाने के बाद वहाँ वो सम्यक्त्व का वमन यानी वो छोड़ देगा, फिर दोबारा उसको प्राप्त कर सकता है। और आपका जो कहना है कि उपशम सम्यक दृष्टि भी मिथ्यात्व में जाएगा, सक्षम सम्यक दृष्टि भी मिथ्यात्व में जाएगा और क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा, इतनी बात ध्यान में रखना। बाकी उन्होंने बहुत लंबा लंबा अच्छा अच्छा बताया, पर ये मूल आपके प्रश्नों का उत्तर है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे, हाथ में छपड़े हैं आप लोग, तो बताना चाहिए कि नहीं। हाँ, मूल बात क्या है कि आपको डर लगता है अरे सम्यक तो प्राप्त करे और गिरे तो काय को सम्यक को प्राप्त करने का। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे पढ़वानी बात ज नहीं करवानी, अपूर्व है वो पुरुषार्थ राखो। अब उनका कहना 100% सही है, फिर भी केवली भगवान के ज्ञान में जो बात आई है उससे तो इनकार नहीं कर सकते। अभी जब घर में से बच्चा सीख सख के मतलब बड़ा हो गया है तो उसको बोलेंगे जा बेटा तू धंधा खोल, तेरे को जो चाहिए दिवाड़ियों थी तो दिवाड़ियों था तो एना डरती तो घरे बेहे तो हूं मले, ख्याल में आया। लेकिन वैसा वो धंधा करेगा, धंधा करने वाले करोड़ों लोग हैं, कितने अंबानी हैं, तो क्या धंधा करना बंद करते? वो तुम्हारा कौन है भाई, वो बुल क्या नाम है पारिक, क्या है केतन पारिक, सभी केतन पारिक हो गए क्या? तो फिर भी कोई है ना हमारे तुम्हारे जैसे, हा? चेतन हम केतन नहीं तो नहीं। इसका अर्थ ये है कि सम्यक्त्व से सभी गिरते हैं ऐसा भी नहीं है, हा? और सभी नहीं गिरते हैं ऐसा भी नहीं है, कोई गिरे कोई ना गिरे। हाँ आगे।
हाँ देखो, ये जोड़नी सम्यक तो बात कभी आगम में नहीं आती है, परंतु बेंश्री बेन के कथन में ऐसे आया है ये जोड़नी सम्यक तो उसका उन्होंने ऐसा अर्थ
के बारे में कहा जाता है कि
नहीं उन्होंने ये बात कही थी कि जोड़नी सम्यक तो भी होता है। नहीं उसका अर्थ समझ लो पहले कि अभी जो क्षोभम सम्यक तो है तो आगे के भव में भले अभी कितने ही भव बाकी 2, 4, 10 तो उस भव में छूटेगा नहीं और जाके वो क्षायिक होगा, उसको जोड़नी कहा है उन्होंने। जो क्षोभम सम्यक तो अभी उत्पन्न हुआ है, अभी यहाँ से देव में गया, देव में से फिर मनुष्य हुआ, मनुष्य में मान लेते भी देव और मनुष्य के 2-4 बहु भी बाकी है मोक्ष जाने के पहले, परंतु वो सम्यक तो छूटे बिना क्षोभम सम्यक तो में से क्षायिक सम्यक तो की प्राप्ति होना, उसको उन्होंने जोड़नी सम्यक तो कहा है, जोड़नी। परंतु ये शब्द कहीं आगम में नहीं मिलता है, यानी ये तो हमने ये अपने तो ये तो समझ सकते हम कि कोई क्षोभम सम्यक तो प्राप्त किया है और अभी उसका छूटेगा नहीं, उपक्षायिक लेके मोक्ष चला जाएगा।
हम ये भी तो निश्चित जानते हैं कि क्षोभम सम्यक दर्शन किसी जीव के रहेगा एक साथ लगातार तो 66 सागर वर्ष तक रहेगा। अब उस 66 सागर वर्ष में हो सकते हैं 10-5 मनुष्य और देवगति के भव भी हो जाए, क्योंकि एक सागर वाला होगा, 10 सागर वाला होगा, 22 सागर, जो भी जो जिसका जो है न सर्वार्थ सिद्धि वाला होगा तो दूसरे अगले भव में ही जाएगा मोक्ष में। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि भाई वो अभी आगे की बात भी आप जानते होंगे कि 66 सागर के बाद एक अंतर मुहूर्त के लिए वह जीव तीसरे गुण स्थान में आता है और दोबारा फिर वापस क्षोभम सम्यक तो प्राप्त करते हुए वह क्षोभम सम्यक तो और आगे 66 सागर रहेगा, यानी टोटल 132 -1 अंतर मुहूर्त लेकिन वो लगातार वाली बात नहीं है, बीच में कट होता है ना, तो हम लगातार की कहेंगे तो 66 सागर, और बीच में कंसेशन चाहिए तो 132 सागर, उसके बाद तो वह जीव निश्चित रूप से, यानी वो 132 पूरे होने के पहले शायिक होके मोक्ष प्राप्त करेगा। वैसा जोड़नी लेना है तो ले लो, नहीं बराबर है, बिल्कुल पूछना चाहिए भाई,
पूछना है ऐसे कोई, क्योंकि कोई शब्द आते हैं परंतु हमें कहीं कर्णानियोग के ग्रंथों में ये शब्द नहीं मिला है, परंतु उनका कहने का ऐसा है कि जैसे अभी समय सार में भी हम देखते हैं ना कि हम तो शायिक हो जाएंगे, मोह का क्षय हो जाएगा, यानी इतना अंदर से जोर है कि अभी ये छूटने वाला नहीं है, शायिक होकर ही रहेगा, इसको कहते हैं हमारा मोह का क्षय हो गया, कहने की पद्धति है ना वहां पर, ये सम्यक्त्व का वेद इतनी दृढ़ता है वहां पर।
मुझे लगता है ये मेरा अंदाज है, स्वामी जी भी पहले कर्णानियोग सिखाते थे, धौला का उन्होंने वहाँ वांचन भी किया था, और हमने ऐसा वहाँ के रहने वाले सोनगढ़ में रहने वाले ब्रह्मचारी बेनोन से सुना है, 1 से 8 धौला के भाग उन्होंने 2 बार सिखाए, लेकिन हमारा इतना कम नसीब है, उस जमाने वो टेपिंग नहीं होता था इसलिए, लेकिन कोई सुनने वाले अभी भी हयात मौजूद है लोग, बेन अपने क्या बोलते हैं ब्रह्मचारी बहनों, अभी अपना क्या कहना है कि जब उनको पता लगा कि ये कुछ गड़बड़ी है तो उन्होंने फिर समय सार को ही चालू रखा, और जब ही जब बोलते थे कि पड़वानी बात ही नहीं करो, क्योंकि लोग ऐसा भाग जाते थे, अरे गिरने का, अरे ऐसा ऐसा, पर भैया गिरने का तो गिरता है तो तू थोड़ी गिरने वाला है, जो गिर गए हैं और जो केवली के ज्ञान में बात आई है कर्णानियोग अवश्य बताएगा। अभी आपको मालूम नहीं है तो मैं बता ही देता हूँ, ये मेडिकल में ये उज्ज्वला DCH यानी डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ करती थी, यानी बाल रोग तज्ञ का कोई अभ्यास होता है वो करने थे, तो वहाँ हर जगह पे ये जिसको कहते डिफॉर्म बेबी, यानी जो नॉर्मल नहीं अबनॉर्मल, ऐसा 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 बच्चों का वर्णन, उसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, सब अभी उनमें तो हजारों लाखों करोड़ों केसेस में 1 करोड़ केस मिलते कि जिसकी 3 आँख आ गई है, किसको दांत पहले से उगे हैं, ऐसे आते हैं ना कुछ कुछ, तो ये बार बार सोचती थी, ये बात आपको मालूम है कि मुझे लड़का या लड़की जो कोई हो हेल्दी बेबी हो, बस ये भाव है, तो भाव से थोड़ी कुछ होने वाला है, और हम जरूर कहेंगे नहीं गिरना है, अरे तेरे गिरना होगा तो होगा ही, तेरे कहने से थोड़ी होना है। इस तरह से गुरुदेव ने तो कोई खोट बात नहीं की, बिल्कुल बढ़िया कही है, और उनका ऐसा प्रेरणादायक जो उपदेश था ऐसा ही था, ऐसा क्या बोलते हैं दामाडोल बात, क्या बोलते हैं यानी अस्थिर वाली बात नहीं, हाँ हाँ ढीली पोची बात ना कर भी, फर्मली बात करो,
तत्व का निर्णय इतना दृढ़ता हो जाए
होना चाहिए, हाँ। और होगा ही ऐसा
कि तो सम्यक तो हो तो छूटने का सवाल ही नहीं, क्योंकि तत्व निर्णय बिल्कुल दृढ़ता से हो गया,
और ऐसा ही हम सोच कर ही आगे बढ़े, नादारी क्या बोलते हैं देवाड़ियों थी तो ऐसा नहीं करना।
देखो अभी जो यहाँ पंचम काल में जन्मे सभी जन्म से तो मिथ्या दृष्टि ही जन्मते है, यहाँ पर अभी यहाँ की पंचम काल की बात है, ऐसा भी हम विचार करें रीना हमको पूछते, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने पहले सम्यक तो प्राप्त किया है और छूटा है, हाँ तो हो सकता है, तो वो तो ज्यादा आसान हो गया ना, अभी प्राप्त कर लो, क्यों उसको कहते दृष्टि पथ, एक बार रास्ता देख लिया है, जैसे हम किसी नए गांव में जाते हैं कोई एड्रेस ढूंढना है, हाँ पता ढूंढना है किसी का, तो इधर पूछो उधर पूछो उधर पूछो, या फिर वो स्ट्रीट नंबर देख के फिर जाओ, और एक बार देख लिया होगा तो जड़ से मिलता है, तो किसी का सम्यक तो छूट भी जाए तो हो सकता है अंतर्मूर्त में वापस वो प्राप्त कर सकता है, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज और वेरिएशंस। यहाँ तो उपदेश तो पुरुषार्थ के करने का ही उपदेश होगा, उपदेश के कारण जीव पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पुरुषार्थी जीव अपने से ही पुरुषार्थ करता है, परंतु दूसरे को जो बताया जाता है उपदेश किया जाता है, ऐसा करो वैसा करो ऐसा मत करो स्वाध्याय करो चिंतन करो, यही तो उपदेश होगा, तो उपदेश की भाषा अलग होती है, और कर्णान योग में तो क्या हो सकता है, कितने जीवों का क्या हो रहा है, उसकी बात वहां बताई जाती है। उसे डरने की कोई बात नहीं, उस उल्टा अपना पुरुषार्थ, ये इतनी दुर्लभता की बात की है, डराने के लिए की है कि ऐसी दुर्लभ में दुर्लभ बात आपको मिल गई है, तो आपको तो अभी इतनी तो जिसको कहते हैं ना अड़सर, जिसको कहते क्या ऑब्स्टेकल्स, इतने तो पार करके आए हैं, अभी तो बहुत आसान है सम्यक्त्व की प्राप्ति करना। इसलिए ये उपदेश हमें तो प्रेरणा के अर्थ में लेना, उसकी प्रेरणा मिलना चाहिए हमको उसके लिए। अब आगे पढ़ेंगे।
देखो अभी हमने ये अर्थ तो पढ़ लिया,
अर्थ लिया हाँ।
लास्ट लाइन से पढ़ेंगे अभी इसी पेज पर, लास्ट लाइन से मूल में पहले में पहले क्या बताए, निद्रामा सम्यक दर्शन उपजतू नथी, यानी जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होने का काल होगा उस समय वह जीव जागृत अवस्था में होगा। तो यहाँ अपने क्लास में किसी को नहीं होगा क्योंकि सब लोग अरे भाई शास्त्र सुन रहे, अपने स्वरूप में थोड़ी जा रहे, इसलिए नहीं होगा ऐसा। में सम्यक दर्शन प्रकट थती वखत नी आ वात छे, सम्यक दर्शन थया पछी निद्रा वगैरह होय ऊंघतो होय ते सम्यक दर्शन प्रकटी जाय एम न बने। सम्यक दर्शन होय ने सॉरी ऊंघतो होय ने सम्यक दर्शन प्रकटी जाय एम न बने, पण सम्यक दर्शन प्रकट्या पछी तो ऊंघ वक्ते पण तेनो काई नाश थई जतो नथी, तेनो एटले सम्यक्त्वनो। ऊंग वक्ते पण सम्यक दर्शन होय छे, अरे भाई ऐसी क्या बात है, कोमा में जावे वो जीव तब भी उसको हो सकेगा क्योंकि शरीर से क्या संबंध है,
प्राप्ति की बात यहाँ
नहीं, प्राप्ति की नहीं, बाद में टूटता नहीं ना,
कंटिन्यू रह सकता।
एज प्रमाणे सम्यक दर्शन प्रकट तो पर्याप्त दशामा थाय, पण पछी तो अपर्याप्त दशामा पण क्षायिक सम्यक तो होय। ये अपर्याप्त दशामा पण यानी यहाँ से कोई क्षायिक सम्यक तो के साथ जाएगा और आगे जाके दूसरे भव में उसकी अभी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, उस काल में भी उसको सम्यक तो टिका रहेगा। आपका ऐसा पूछना है क्या ये सम्यक दर्शन सॉरी तीर्थंकर की अपेक्षा से ये बात सच्ची है? नहीं, हर क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से वह क्षायिक सम्यक्त्व के साथ अगले दूसरे भव में जाते हैं वह जीव, अभी हम परसेंटेज नहीं लगा लेकिन अधिक से अधिक तो स्वर्गों में ही जाएंगे, कोई नरक में भी जा सकता है, कोई तिरंज में भी जा सकता है और कोई
मनुष्य
में भी जा सकता है। शायिक सम्यक्त्वी तो उसके जिस भव में जाएगा वहां जब तक उसकी पर्याप्ति छह पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक, अभी आपको बताया ना निर्वृत्ति अपर्याप्त कहते हैं, निवृत्ति नहीं, निर यानी उसके ऊपर ऐसा ऊपर रफा रफा के ऊपर और नीचे ऐसा वृ, ऐसी जो ड्यूरिंग द जैसा आपको बताया अभी दो मिनट पहले अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बात है ना, जब तक ये छह पर्याप्ति उसको कितना समय लगे तो कहते हैं अंतर्मूर्त लगे, उस समय जो अपर्याप्त अवस्था है उस समय भी उस जीव के सम्यक्त्व छूटता नहीं है। यानी लेकिन कोई जाने दो अभी वो उलझन में नहीं डालता हूँ। सम्यक दर्शन उपजती वक्ते ज्ञान उपयोग होई छे, दर्शन उपयोग नती हो तो, ये बिल्कुल ध्यान में रखना हो, इसकी बात हमने बहुत बार की है फिर भी ए प्रमाणे बधा बोल समझी लेवा आवी योग्यता यो बराबर यो करो होय ते जीव सम्यक दर्शन पामे छे ने पछी ज व्रत पड़ीमा वगैरे होय छे। बेसिक कंडीशन कौन सी चाहिए पांचवे गुरु स्थान के लिए? बेसिक रिक्वायरमेंट पांचवे गुरु स्थान वे बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी है? व्रत प्राप्त करने के लिए वह जीव सम्यक भी होना चाहिए। तो कितने कषाय चौकड़ी का अभाव चाहिए? हाँ, एक नहीं चलेगा।
सम्यक्त्व के लिए पूछ रहे हैं।
हाँ
हाँ, आप सम्यक्त्व के लिए पूछ रहे हैं ना?
पंचम गुणस्थान के लिए पूछ रहा हूँ मैं। तो आपने उत्तर दिया दो, तो दो होगी शायद, शायद बोला ना। तो मैं पूछता हूँ, एक नहीं चलेगी क्या? एक कषाय चौकड़ी जाएगी तो चलेगा कि नहीं पांचवे गुणस्थान वाले को? हाँ, दोनों ही कंफर्म नहीं है। हम बापा को पूछते हैं, क्या कंफर्म है आप? हाँ, एक कषाय चौकड़ी होगी उसको तो चलेगा कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
पहले से बताया कि दो ही चाहिए।
हाँ, बता रहे हैं चौथे वाले को एक कषाय चौकड़ी नहीं रहेगी और पांचवे वाले को नियम से दो नहीं रहेगी, नहीं तो पांचवा होगा ही नहीं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि यह जो पंचम गुणस्थान वर्ती जीव है, जिसको प्रतिमा वगैरह धारण कर रहे हैं, ऐसे जीव को यहाँ बताया क्या कि दो कषाय चौकड़ी का अभाव है? कल एक प्रश्न उठा था, अरविंद भाई ने पूछा था, तीर्यंचों को कौन सी प्रतिमा होती है? तो उसका उत्तर आज मिल गया। यहाँ कहा कि सम्यक दर्शन हो बस, बाद में प्रतिमा होगी। क्या लिखा देखो देखो, अभी योग्यता ते जीव सम्यक दर्शन पामे चे ने पछी जो व्रत परिमा वगैरह हो, यानी वो दो कषाय चुकड़ी का अभाव हुआ है, मूल में उतना उनको सम्यक दर्शन है। अब आगे प्रतिमा वगैरह कौन सी है वो तो कोई हमने,
पांच अनुव्रत तो होते ही उनके। हाँ, पापों का त्याग जो है, स्थूल पापों का त्याग।
हाँ,
वो उनके भी होता है।
नहीं, पहली प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा, ऐसा कहीं हमने पढ़ा नहीं है। अब ये तो बात नक्की है कि उनके, यहाँ तो लिखा ना सम्यक दर्शन था पछी जो परिमा वगैरह हो, तो उसको हम कह सकते,
ये तो प्रतिमा है, तो यहाँ मनुष्य की अपेक्षा ही बताई है।
हाँ, कौन
वहाँ भी चिंतन रहेगा उनका, क्योंकि जिसके भी समय दर्शन प्राप्त हुआ है, संगी पंचेंद्रिय है, तो उनमें भी वैसा मनन चिंतन उनका भी चलता रहता है।
वो
पहले सम्यक तो होगा, बाद में पंचम गुणस्थान होगा, या सम्यक तो के साथ डायरेक्ट पंचम गुणस्थान होगा, एनीथिंग इज पॉसिबल।
ऐसा मनुष्य की अपेक्षा से हम कहेंगे,
उनको व्रती कहेंगे हम, यानी पांच पांच अनुव्रत तो होते ही उनके, परंतु उनको ऐसा कुछ बोल के व्रत अंगीकार करना ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। परंतु उनको तो जैसे मांसाहार नहीं होता है, उनके योग्य जो कोई जिसको कहते ना, उनके जो आचार है, उनके जो कोई क्रियाएं हैं, उनमें पाप को त्याग कर उनकी क्रियाएं होगी। देखो यहाँ एक बात आई है, ये भी थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, फिर यहाँ जो लिखा है ना नीचे से चौथी लाइन में, ए प्रमाणे समय दर्शन प्रकट तो पर्याप्त दशा में था पण पछी अपर्याप्त दशा में पण क्षायिक सम्यक तो हो, तो क्या अपर्याप्त दशे में केवल क्षायिक समय दर्शन ही होगा कि और भी कोई समय दर्शन होगा? हाँ, क्षोभसम सम्यक तो भी होगा, क्योंकि हमने देखा था यहाँ से क्षोभसम समय दृष्टि है, अभी कोई मनुष्य है समय दृष्टि, यहाँ से देव में जाएगा तो क्षोभसम सम्यक तो के साथ जाएगा। देव में कोई समय दृष्टि है, वो क्षोभसम समय दृष्टि है, तो वो मरकर यहाँ मनुष्य में जन्म लेगा विदेह क्षेत्र में अभी वगैरह, तो उसके तो क्षोभसम सम्यक तो के साथ जन्म लेगा। नरकों में कोई समय दृष्टि है, क्षोभसम समय दृष्टि है, मरकर मनुष्यों में आएंगे तो क्षोभसम सम्यक्त्व के साथ जन्म लेंगे। तीर्यंच है क्षोभसम समय दृष्टि, मरकर देवों में जाएंगे तो क्षोभसम सम्यक्त्व के साथ जाएंगे, तो उनके भी अपर्याप्त अवस्था में क्षोभसम सम्यक्त्व पाया जाएगा।
अब अपेक्षा से हम पूछते हैं
तो उपशम सम्यक्त्व
भी, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व भी, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ अगले भव में जाएगा।
देखो वही बात आती है, औपशमिक समय दृष्टि होगा कि नहीं होगा, तो कहते प्रथम उपशम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रथम उपशम के काल में मरण नहीं होता। प्रथम उपशम सम्यक तो है ना, अंतर्मूर्त वाला है, उस अंतर्मुहूर्त में जीव को मरण हो ही नहीं सकता, ये नियम है, उसके पश्चात हो जाएगा। अब दूसरी बात, द्वितीयोपशम कौन जीव करता है? श्रेणी के सन्मुख करता है। फिर श्रेणी में भी, उपशम श्रेणी में भी उसका द्वितीयोपशम सम्यक तो है। उपशम श्रेणी से लौट कर आया नीचे के गुणस्थानों में, छठे तक तो आया क्रम से, फिर भी औषमिक सम्यक तो द्वितीयोपशम चल रहा है, तो ऐसे जीव को वहां मरण हो जाए, क्योंकि द्वितीयोपशम का जो अंतर्मूर्त काल है वो पूरा होने के बाद वो वेदक सम्यक तो हो जाता है अपने आप। उसके पहले ही द्वितीयोपशम के ही काल में कोई जीव मर जाए तो देव में जाता है, और वहां भी अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक तो होता है उसके, और फिर बाद में वही जीव क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। यानी अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक भी हो सकता है किसी को, वेदक भी हो सकता है, या द्वितीयोपशम में भी देवों में पाया जाएगा, अन्य गतियों में वो द्वितीयोपशम वाला नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, फिर भी जिसको अभ्यास हो गया है थोड़ा बहुत, उसके लिए और एक्स्ट्रा पॉइंट बताना था, आगे बढ़ेंगे भी। वो अंतर्मूर्त ही है सब, तीनों भी अंतर्मूर्त है, सबका मिलकर भी है। सबकी क्या बात है, पांचों लब्धियों का मिलकर अंतर्मूर्त है काल, और पांच लब्धि प्लस सम्यक तो मिलकर भी अंतर्मूर्त है।
देखो देखो, ये आपको थोड़ा गड़बड़ लगता है। मिनिमम मिनिमम अंतर्मूर्त छोटे में छोटा जघन्य, एक आवली अधिक एक समय, और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त 48 मिनट में एक समय कम, यानी दो घड़ी में एक समय कम, ये इतने सारे अंतर्मूर्त है। तो जो 48 मिनट में एक समय कम वाला जो अंतर्मूर्त है, उसके पेट में ये असंख्यात छोटे 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 अंतर्मूर्त होंगे। तो यह भी बात ख्याल में आई, एक लब्धि के लिए भी अंतर्मूर्त, तीन करण लब्धि के लिए भी तीनों का मिलकर अंतर्मूर्त, पांच लब्धियां हैं उनके भी अंतर्मूर्त, पांच लब्धियां और उपशम सम्यक तो भी अंतर्मूर्त, बढ़ाते जाओ, क्षयोपशम सम्यक तो हो गया फिर भी वो उसके साथ आए।
मिनिमम तो आवली वाला नहीं होगा वहां पर, क्योंकि उसके अंदर कितने ही अंतर्मूर्त अलग होते हैं, कितनी बार स्थिति कांडघात, कितनी बार ये जो सारे प्रोसेसेस है, एक एक प्रोसेस अंतर्मूर्त का है, और ऐसे बहुत बार होते रहते हैं। नहीं, अपर्याप्त दशा नहीं, वहाँ विग्रह गति के बाद वाली, जब शरीर धारण करने के पहले समय से लेकर ये पर्याप्तियां शुरू होती है। देखो जो मोड़ वाली जो होते हैं ना बीच में, कोई सीधी गति से एक समय में या दो समय में जो जाता है तीन समय में, तो उसको विग्रह गति कहेंगे। उसके बाद परमाणु का ग्रहण शुरू हो जाता है और तभी पर्याप्तियां भी चालू हो जाती है। वहां से लेकर अंतर्मूर्त काल तक लगातार वो पर्याप्तियों की पूर्णता होती है। हाँ, उतना लेना। लब्धि अपर्याप्तों में कोई भी सम्यक तो होता ही नहीं, उसमें कोई जाएगा नहीं, समय दृष्टि मरकर अपर्याप्तों में जन्म नहीं लेगा, लब्धि अपर्याप्तों में जन्म नहीं लेगा। वो तो हमने देखा ना, एक इंद्रियों में जाता है ना विकलेंद्रियों में जन्म लेता है ना असंगी में जन्म लेता है, सम्यक तो बना रहे तो की बात है। हाँ, अभी आगे का
धर्म एटले वस्तुनु स्वरूप तेने अनुसरीने विचारणा चाले तेनु नाम धर्म अनुप्रेक्षा छे। ये धर्म अनुप्रेक्षा में जीव क्या करता है कि यह जो छह द्रव्य जो है उनका कैसा स्वरूप है उसके बारे में सोच चलती है, और अपने स्वरूप का स्वभाव का अंदाज लेते हुए उसी में एकाग्र हो जाता है, वो साची धर्म अनुप्रेक्षा। और जब विचार चल रहे हैं, जब वो शुभ उपयोग चल रहा है, यथार्थ धर्म अनुप्रेक्षा सम्यक दृष्टि ने जो होई छे, सम्यक दर्शन पन आत्मानो धर्म छे, तेनी आ व्याख्या चाले छे। धर्म एटले आत्मानी वितरागी पर्याय, सम्यक दर्शन पन वितरागी पर्याय छे। चौथा गुणस्थान नु सम्यक दर्शन ते पन खरेखर वितराग छे। चौथा गुणस्थाने पन निश्चय सम्यक दर्शन छे। ते सम्यक दर्शन ना त्रण प्रकार छे, औपशमिक, क्षायोपशमिक अने क्षायिक। तेमा उपशम अने क्षायिक सम्यक्तोनी उत्पत्ति केवी रीते थाय छे ते कहे छे। आगळ सम्यक्तोना त्रण प्रकार छे, तेमा उपशम अने क्षायिक सम्यक्तोनी उत्पत्ति केवी रीते थाय छे ते कहे छे।
देखो तीन में से दो नाम यहाँ बताए, तीसरा नाम क्या है? यहाँ कौन से बताए? उपशम और क्षायिक, और कौन सा रहेगा? क्षोपशमिक, क्षोपशम सम्यक्त, या उसी का दूसरा नाम है वेदक सम्यक्त। वेदक कहो या क्षोपशम सम्यक्त कहो, एक ही बात है। अब यहाँ हम गाथा पढ़ेंगे तो उसमें से दो की बात यहाँ करेंगे, औपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। सप्तानाम प्रकृति नाम उपशमतः भवति उपशमं सम्यक्त्वं, क्षयतः च भवति क्षायिकं केवलि मूले मनुष्यस्य। क्या कहते हैं? पहले में पहले उपशम सम्यक्त्व किसको होता है, तो अभी हमने जो देखा था चारों गति के भव्य वगैरह वगैरह, तो कौन से प्रकृतियों का उपशम होता है? तो कहते सात प्रकृतियों का उपशम होता है। ये जो सात बात बताई है, तो एक बार उपशम सम्यक्त होके छूटता है, उसके बाद दोबारा उपशम सम्यक्त तो प्राप्त हो, तो यहाँ सात की बात आती है। अन्यथा जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसके सत्ता में एकमात्र मिथ्यात्व तो प्रकृति है, उसका बंद होता है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व, ये जो दर्शन मोहिनी के अन्य दो प्रकृतियां हैं, वो मिथ्यात्व में से बनती है। कब बनती है? जब सम्यक्त प्राप्त होता है तब बनती है, उपशम सम्यक्त के काल में। तो अनादि जो मिथ्या दृष्टि है, उसके सत्ता में दर्शन मोहिनी की एक है मिथ्यात्व, और यहां उपशम होने वाली चारित्र मोहिनी की पहले समय में, उपशम सम्यक्त के पहले समय में बनती है, पहले समय से बनना चालू होती है।
एक मिनट, आपका प्रश्न ऐसा है, सम्यक्त होने के पहले से वो तीन होती है कि बाद में होती है?
हाँ,
अंतर मुहूर्त का
देखो। आपका प्रश्न ऐसा, उपशम काल कब आता है? तो थोड़ा पहले देखते हैं। अभी करण लब्धि में कोई जीव है, यानी करण लब्धि में तीन करण होते हैं, एक होता है अधप्रवृत्त करण, एक होता है अपूर्व करण, और एक होता है अनिवृत्ति करण। उसमें क्या होता है? जीवों की विशुद्धि बढ़ती है। जब वो अनिवृत्ति करण में आता है, तो वहां अभी हम एक मिथ्यात्व इसको लेते हैं, तो वो मिथ्यात्व प्रकृति में क्या होता है उसको देखेंगे दर्शन मोहिनी के, क्योंकि वो तीन प्रकृति कब तैयार होती है हमको देखना है। तो अनिवृत्ति के काल में आता है, तो ये जो लगातार उसके निषेक होते हैं, सत्ता में पड़े हैं, और उदय भी मिथ्यात्व का अभी चल रहा है, तो उदय के ऊपर कुछ निषेक छोड़कर बीच के निषेक जो है उसके परमाणु कुछ नीचे कुछ ऊपर जाते हैं, और उसमें गैप तैयार होती है, इसको कहते हैं अंतरकरण।
ये अंतरकरण तो मिथ्यात्व प्रकृति में ही हो रहा है। हाँ, आगे।
हाँ, अकेले मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, अनंतानुबंधी की यहाँ बात नहीं ले रहे हम, कि उसका प्रोसेस अलग है। तभी गैप के ऊपर और गैप के नीचे, अब गैप के नीचे है तो उदय रूप होकर ही खिर जाएंगे, तो उसका उदय होते 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 गैप तक जीव आ गया, और जब गैप तक आता है ना, तो उसके पहले ऊपर के जो है गैप के ऊपर, उसको क्रम से थोड़े थोड़े करके एक एक लौट करके पूरा उपशमित किया जाता है, यानी पहले गैप तैयार होती है, अंतर किया जाता है, और बाय द टाइम नीचे का एक एक नीचे उदय में आते रहेगा, वो जो छोटा अंतर्मूर्त बाकी है, उतने काल में ऊपर के गैप के ऊपर के परमाणुओं को निषेकों को उपशमित किया जाता है, अपनी जगह छोड़कर नीचे उदय नहीं आ सके ऐसा किया जाता है। तो जब गैप तक आया जीव, यानी उतना काल बीत गया, तो क्या हुआ? ऊपर के तो उपशमित है, गैप में कोई है ही नहीं है, जिसका उदय हो सके और नीचे के सभी उदय होके खिर गए हैं। तो ये गैप में कब आता है? तो अनिवृत्तिकरण काल के पश्चात वाले समय में गैप में आया। हाँ, क्योंकि जब तक अनिवृत्तिकरण में है तब मिथ्यात्व का उदय है, तो उसका उदय का अंतिम समय है, तब ऊपर क्या पोजीशन है? सभी उपशमित होकर पड़े हैं, अभी उसमें से कोई उदय में नहीं आ सकते। अभी गैप का पहला समय वो सम्यक्त्व का पहला समय है। उसी समय ऊपर जो उपशमित है परमाणु सारे, उसमें से मिथ्यात्व में से संक्रमण होकर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, ये दो प्रकृतियां और तैयार होती है। उपशमित अवस्था में ही उसका संक्रमण चल रहा है। संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व में से और दो प्रकृति होती है। तो ये जो तीन टुकड़े होते, ऐसा कहा, ये प्रथम उपशम सम्यक्त के पहले समय से यह प्रोसेस शुरू हो गया। पहले समय में भी होगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। ये उपशम सम्यक्त्व का अंतर्मूर्त काल है। उस काल तक वो उपशमित है, जो तीनों प्रकृतियां, उसमें से किसी का उदय नहीं हो सकता। उसमें संक्रमण हो रहा है, उसका उदय नहीं हो सकता। अब ये उपशम जो है वो कंडीशन अंतर्मूर्त के लिए रहती है। उसके बाद उसमें से तो यथा योग्य जीव के परिणाम के अनुसार उदय होगा। तो सम्यक प्रकृति का उदय हुआ तो क्या होगा? सम्यक तो बना रहेगा। मिथ्यात्व का उदय हो जाएगा, जीव मिथ्यात्व में आ जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा तो जीव तीसरे में चला जाएगा। ये उदय होगा हम कर्म की तरफ से बता रहे हैं, वहां जीव के भावों को लेना है। और उपशम की अवस्था के पहले ही अनंतानुबंधी का उदय हो जाए तो जीव दूसरे में आता है। अब मिथ्यात्व प्रकृति में तो अंतर और उपशम, ये दो बातें हो रही है। अनंतानुबंधी का क्या होता है? तो जब सम्यक्त्व का पहला समय है, उस समय से क्या होता है? अनंतानुबंधी है, उसके भी निषेक है। वहां पहले चार कषायों का उदय शुरू, कौन सा? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजबलन। सम्यक्त्व प्राप्त होते ही ये तीन का उदय बना रहता है, और अनंतानुबंधी का जो उदय रूप निषेक है वो उन तीन रूप होकर उदय में आता है। उसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम। एक एक निषेक ही उसका संक्रमित हो जाएगा, इसीलिए उसमें तो कोई ऐसा गैप करके उपशम नहीं हुआ है। इसलिए औपशमिक सम्यक्त्व के काल में, एक समय पहले या छह अवली पहले काल में उसका उदय हो सकता है किसी जीव को। यदि वैसा हो जाए तो सम्यक्त्व छूटता है और जीव दूसरे गुणस्थान में आता है। ये कंडीशन होते। तो जो अनादि का मिथ्या दृष्टि है उसके एक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार मिलकर पांच का उपशम होता है। परंतु जिसने एक बार औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है फिर वो मिथ्यात्व में गया है तो कितने काल तक वेदक होगा? बाद में औपशमिक होगा तब उसकी कितने प्रकृतियों का उपशम करेगा? दर्शन मोहिनी की तीन और अनंतानुबंधी की चार, मिलकर सात प्रकृति हो जाएगी। तभी वो सात प्रकृतियों का उपशम करेगा।
यहाँ पर बात है वो सात प्रकृतियों वालों की बात है, अनादि मिथ्या दृष्टि की नहीं है।
यानी
बताएंगे आगे शायद।
सात को लेने का इतना ही यहाँ, क्योंकि सात का उपशम करता है वो औपशमिक और सात का क्षय करता है वो क्षायिक, तो सात दोनों जगह बताना था इसलिए वहां लिया। फिर भी यहाँ अनादि का होगा तो उसके पांच ही है प्रकृतियां, ये बात समझना चाहिए। क्षायिक वाला सातों का क्षय करता है, उसकी अपेक्षा से ये दोनों जगह सात लिया है। अभी ये गाथा कल ही पढ़ेंगे,
कल पढ़ना है। गाथा तो पढ़ ली थी आप, बार तो बता रही थी, ये पढ़ी ना भाई। सप्ताह नाम प्रकृति नाम उपशमता, उसको खत्म कर दो कल। अच्छा कल देखो। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो सोवाणी मत सचरण मो सदा देता।